अपना स्वागत पूछ करके फिर पीठ पटे उतार लेते हैं, पीताम्बर उतार करके प्रभु उनको बैठने के लिए दे देते हैं। इसका मतलब कि जहां पर ज्ञानी आते हैं प्रभु अपने पीताम्बर को अपने अपनी माया को अपने आवरण को उतार भी लेते हैं, पर भक्त इस आवरण को उतरवाना नहीं चाहता। यह जो नाम रूप का आवरण है इस आवरण को रखना चाहता है, पर यह नहीं चाहता कि यह पर्दा इतना मोटा हो जाए कि प्रभु का दिखना ही बंद हो जाए। और प्रभु कैसे हैं, तुलसी कहते हैं भक्त के इशारे पर काम करते हैं। तो भाई प्रकट कृपाला, जिस समय प्रभु प्रकट हुए उस समय मां समझती है कि यह अपना पाठ भूल गया, अभिनय भूल गया, इसलिए मां कहती है की जय शिशुलीला। पर प्रभु का भाव तो भिन्न है कि तुमने चाहा था चाहो तुम्हें समान सुत, तुमने कहा था पुत्र के रूप में पाऊं। मां जब मैंने शत्रुपा के रूप में तुमसे पूछा था कि तुम क्या चाहती हो, तो तुमने कहा था कि राजा ने जो वरदान मांगा है वह बिल्कुल मेरे लिए अनुकूल है। इसका मतलब यही था कि तुमने भी पुत्र के रूप में मुझे चाहा था। लो मैं आ गया हूं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना है। तो मां ने कहा रो दो। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ठान करके रोना शुरू कर दिया। पर प्रभु तुलसीदास जी ने इतना सुंदर निर्वाह किया है रामचरितमानस में कि प्रभु स्वयं होकर के कुछ नहीं करते हैं, मानो उन्हें कहना पड़ता है, संकेत देना पड़ता है कि यह करो। जैसे आए विश्वामित्र ऋषि, आए यज्ञ की रक्षा नहीं हो पा रही है, आते हैं राजा दशरथ से श्री राम को मांगने के लिए, और हम पढ़ते हैं कि श्री राम और श्री लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे हैं अपने अरण्य में जहां पर वे निवास करते हैं, ताकि राक्षसों से यह जो यज्ञ में बाधा उत्पन्न होती है उस बाधा को दूर किया जा सके। अब जब जा रहे हैं सामने तारका आती है, अब तारका जब आती है तो प्रभु तो नहीं जानते यह तारका कौन है, तब मुनि दिखाते हैं, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी तारका क्रोध करी धाई। दिखा दिया तारका आ गई, अब प्रभु चुपचाप है। फिर कहा, कहा मुनि ने, विश्वामित्र ने कहा इसके प्राण हरण करो राम, और तब एक बाण से उसके प्राण का हरण करते हैं। मानो प्रभु यही देखना चाहते हैं कि भक्त मुझसे कहे वह क्या चाहता है, भक्त की कामना को स्वीकार करके वे कर्म करते हैं। गए अहिल्या के आश्रम में, प्रभु ने पूछा कि यह जड़ वस्तु कौन सी है शिला के समान, और तब बता देते हैं सारा इतिहास अहिल्या का। और फिर कहते हैं, क्या कहते हैं विश्वामित्र, कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी अहिल्या श्राप के कारण पत्थर का रूप धारण करके यहां पर है, वह जड़ होकर के विद्यमान है, और वह क्या चाहती है, तुम अपने चरण रखो रघुनाथ इसके सिर पर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तुम कृपा करो। और तब प्रभु अपना चरण स्थापित कर देते हैं अहिल्या के मस्तक पर। प्रभु को बड़ी ग्लानी होती इस कार्य के लिए, पर गुरु का आदेश था, गुरु ने कहा और उस आदेश की वे पूर्ति करते हैं, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। अब धनुष यज्ञ में वहां पर भी यही बात है कि लक्ष्मण जी ने ललकारा जब राजा जनक ने कहा कि मैंने मान लिया आज पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है कि कोई भी राजा इस धनुष को उठा नहीं सका, तोड़ने की बात तो दूर रहे। और लक्ष्मण जी उसके उत्तर में कहते हैं, रोष करके कहते हैं, फिर भी प्रभु तो चुपचाप बैठे हैं, वे तो अपने स्वरूप में मग्न है, ब्रह्म तो अपने स्वरूप में मग्न है, ब्रह्म को हरदम जगाना पड़ता है, ब्रह्म के भीतर कामना को निविष्ट करना पड़ता है। और जब चुपचाप बैठे हैं गुरु कहते हैं क्या कहते हैं, उठो राम, उठो, उठो राम भंजहु शिव चापा मेटहु तात जनक परितापा। उठो जाकर के धनुष तोड़ो, और राजा जनक के हृदय में जो परिताप है, जो शोक है, जो दुख है, उस शोक और दुख को मेट दो। और तब आज्ञा मिले, प्रभु जाते हैं, और जाते हैं तो कैसा करते हैं, यही तो अद्भुत है कि जिस समय वे कर्म करते हैं, हम पढ़ते हैं लैत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहुन लखा दे कि सब ठाने। प्रभु गए गुरु का नमन किया, सब देवताओं का नमन किया, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इतनी फुर्ती से धनुष को उठाया जो तोड़ दिया, घोर रव हुआ, प्रचंड घोष हुआ, और उसके बाद उन्होंने दोनों खंडों को धनुष के पृथ्वी पर डाल दिए। किसी ने श्री राम को न तो धनुष उठाते देखा न तोड़ते देखा, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, कि उन्होंने धनुष को उठाया हो, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई हो, खींचा हो धनुष को, किसी ने नहीं देखा। तो क्या देखा? श्री राम गुरु की आज्ञा मान करके धनुष के पास गए और चुपचाप खड़े हैं। इतने में जोरों का घोष हो गया और उसके बाद बिजली की चमक सी आई। बाद में जब लोगों ने देखा तो श्री राम उसी प्रकार खड़े हैं, पर धनुष दो टुकड़ों में विभक्त होकर के पड़ गया है। यह बड़ा विलक्षण संकेत है कि श्री राम कैसे हैं, अद्भुत हैं। वे कर्म तो करते हैं पर कर्ता दिखाई नहीं देता, कि किसने कर्म किया है वह कर्ता नहीं दिखाई देता, कर्म करने वाला नहीं दिखाई देता। वह धनुष तोड़ने का कर्म तो हो गया, दो खंड पड़े हुए हैं धनुष के, पर कर्ता नहीं दिखाई देता। और हम कैसे हैं? कर्ता तो दिखाई देता है पर कर्म नहीं दिखाई देता। बड़ी घोषणा कर देते हैं अखबार में, हम एक सेवा योजना शुरू कर रहे हैं, हम इतने गांवों को ले रहे हैं, यहां पर सब कुछ होगा, फोटो भी छप जाता है, शिला वहां पर बिठाई जा रही, भित्ति स्थापन हो रहा है, उसका भी फोटो छप जाता है। यह कर्म तो, यह तो कर्ता तो बहुत दिखाई दे गया पर कर्म नहीं दिखाई देता है। यह बड़ी विचित्र बात है, हम कर्ता को ही दिखाना चाहते हैं। हम कर्म भी करते हैं तो कर्म के लिए नहीं, अपने कर्तापन को दिखाने के लिए। हम सेवा भी करते हैं तो इसलिए कि लोग हमें सेवक कहें, लोग यह कहें कि हम बहुत बड़े समाज के सेवक हैं, इसके लिए हम मानव सेवा को माध्यम बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे माध्यम से सेवा हो। आप देख लीजिए, यह वृत्ति है। इस वृत्ति की चर्चा कभी दो तीन दिनों में जब समय होगा हनुमान जी के संबंध में, वह जो श्रीराम का जो चित्रण करेंगे अगर होगा तो लेंगे, वह जो सिंहनी का पक्ष है जो आएगा तब। तो यहां पर हमने यह कहा कि हमारा यह जो कर्तापन है वह तो दिखाई देता है पर कर्म नहीं दिखाई देता। भगवान ऐसे हैं जहां कर्म ही दिखाई देता है, कर्ता नहीं दिखाई देता। तो यहां पर वही संकेत कि प्रभु स्वीकार करते हैं कामना को, और कामना को, भक्त की कामना को स्वीकार करके उनके भीतर क्रिया होती है, स्फुरण होता है। अब जब धनुष टूट गया, सीता जी जयमाल लेकर के आती हैं, सखियों ने जयमाल दे दी, कहा पहना दो। अब सीता जी जयमाल लेकर के आई, जब सखियां कहती हैं करीब जयमाल पहनाओ, सुनत जुगल कर भाल उठाई, माने प्रभु के भाल तक दोनों हाथों को उठा करके सीता जी ने जयमाल को रखा है। बड़ा सुंदर चित्रण किया गया, प्रभु ऐसे ही खड़े हैं। अब सीता जी तो कद में छोटी हैं, हाथ उठाए हैं, अब सिर नीचा कर नहीं रहे हैं। अब सीता जी को समझ नहीं पा रही हैं कि कब तक क्या करूं। अंत में सीता जी को नेत्रों के माध्यम से कहना ही पड़ता है कि अरे कब तक मेरे हाथ को इस प्रकार उठवा करके रखोगे, जरा सिर भी तो नीचा करो, जिसे जयमाल तुम्हारे गले में मैं डाल सकूं। और जब भक्त ने ऐसा कहा, प्रभु ने सिर को झुका दिया, जयमाल सीता जी ने पहना दी। सुनत जुगल कर भाल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। और जिस समय सीता जी ने कहा कब तक मेरे हाथों में पीड़ा पहुंचाते रहोगे, प्रभु ने सिर झुका दिया। मानो भक्त जैसा कहे वैसा प्रभु करते हैं, रावण वध होना है। उस प्रसंग में भी देखें कि प्रभु 30-30 बाण चला रहे हैं, उसकी 10 उसके 10 सिर 20 भुजाएं कट जाती हैं, फिर से 10 सिर उत्पन्न हो जाते हैं, 20 भुजाएं फिर से आ जाती हैं, रावण मरता नहीं है। प्रभु बार बार काटते हैं रावण की भुजाओं को, फिर से नई नई भुजाएं आ जाती हैं। प्रभु सिर को काटते हैं रावण के, फिर से सिर उत्पन्न हो जाते हैं। और तब प्रभु तो यह कर रहे हैं, विभीषण जी कहते हैं, संकेत देते हैं। क्या संकेत देते हैं? नाभि कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बसता के। कहते हैं कि प्रभु ये जो रावण है ना, इसलिए जी रहा है कि उसकी नाभि में एक अमृत कुंड है। और तब प्रभु ने संकेत लिया भक्त का, और उसके बाद 31 बाण उन्होंने चला दिए। एक बाण जाता है नाभि में, अमृत कुंड का शोषण कर लेता है, और फिर बाकी 30 बाणों से 20 भुजाएं और 10 सिर कटते हैं और रावण मरता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु हर समय मानो भक्त की इच्छा को देखते हैं, कामना को देखते हैं, राज्याभिषेक होने वाला है और राज्याभिषेक में भी प्रभु मानो निर्लिप्त है। निर्लिप्त है कैसे?
प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा।
बड़ी विलक्षण बात यहां पर कह दी। मुनि ने आदेश दिया था, वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि राम तुम अब तैयार हो जाओ सिंहासन के लिए, राज्याभिषेक के लिए। गुरु का आदेश स्वीकार करके वे स्नान करते हैं, उनको सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और जब देखते हैं मुनि, वशिष्ठ जी देखते हैं श्री राम को, अत्यंत हृदय में आनंद का अनुभव वे करते हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। कह तो सकते थे चलो अब तुम्हारा मैं राज्याभिषेक कर देता हूं, अरे पर नहीं, तुलसी जी ने कैसा सुंदर मान रखा, कहते हैं तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। उन्होंने सिंहासन को मंगवाया, दिव्य सिंहासन को मंगवाया। अरे जिसकी इच्छा हो, जिसमें कामना हो, वह तो सिंहासन तक खुद चल करके जाएगा और बैठेगा, पर जिसमें कामना ही नहीं है उसके तक तो सिंहासन खुद चल करके आएगा, उसे जाने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए वशिष्ठ मुनि वहां पर सिंहासन को मंगवाते हैं और मंगवा करके कहते हैं राम तुम विराजित हो। और आजकल का चित्र कैसा है, कुर्सी तो एक ही जगह गड़ी है, भागदौड़ पछार, घोड़ा पछार, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं और यहां पर कुर्सी श्री राम के पीछे चलती है। कितना अंतर है, यह जो चित्रण है कितना अद्भुत है। मानो कहते हैं कि उनकी क्या कामना है, प्रभु आते हैं मनुष्य रूप धारण करते हैं, कहते हैं हे भक्त तुम्हारी कामना को स्वीकार करके आया हूं, तुम जैसा मुझसे कहोगे तुम्हारी कामना की पूर्ति करूंगा, पर मुझमें तो अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई कामना नहीं है। ये श्री राम है। और कैसे हैं ये श्री राम? भक्त परतंत्र है और ये सभी के वश में हैं, भक्तों की कामना को स्वीकार करते हैं, वे सबके अपने हैं। अब जो सबका अपना हो वह निष्पक्ष होता है न पक्षपाती होता है। तुलसी ने एक प्रश्न उठाया कि जो सबका अपना होता है वह निष्पक्ष होता है या पक्षपाती होता है? आप कहेंगे कि भाई वह तो निष्पक्ष होगा। जो पक्षपाती होगा, जो पक्षपात को प्रश्रय देगा, वह फिर सबका अपना कैसे हो सकता है? तो जो अपना सबका है वह तो निष्पक्ष ही होगा। पर तुलसी अपने राम में एक विशेषता डाल देते हैं, यही तुलसी की खूबी है। वे क्या विशेषता डालते हैं? वे श्री राम को पक्षधर बना देते हैं, यह विशेषता है। तुलसी कहते हैं कि मेरे श्री राम निष्पक्ष नहीं है, वे पक्षधर हैं। क्या अजीब बात कर रहे हो तुलसी, किसी ने कहा। एक ओर कहते हो कि श्री राम सबके अपने हैं और दूसरी ओर कहते हो कि वे निष्पक्ष नहीं हैं, वे पक्षधर हैं। तात्पर्य क्या है तुम्हारी बात का? तुलसी ने कहा कि देखो, निष्पक्षता एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, यह बिल्कुल सही है। हम जब किसी व्यक्ति को देखते हैं कि यह बड़ा निष्पक्ष है, उसके प्रति हमारे मन में आदर बुद्धि का उदय तो होता है, उसके प्रति श्रद्धा का उदय होता है, पर उसके प्रति अपनापन नहीं आता। याद देखिएगा, एक व्यक्ति बड़ा निष्पक्ष है, हम कहेंगे भाई यह व्यक्ति बड़ा निष्पक्ष है, उसके प्रति आदर बुद्धि तो आती है, परंतु हम ऐसा कहते हैं वह निष्पक्ष तो है, हमें कोई काम कराना हो तो नहीं, उससे काम तो नहीं बनेगा, हम उससे अपनापन अनुभव नहीं करते हैं, यही मानते हैं कि व्यक्ति बड़ा निष्पक्ष है। तो निष्पक्षता में एक दूरी हो गई, अपनापन नहीं आया। अपनेपन में तो ऐसा लगता है कि वह मेरे प्रति पक्षपात करे तब तो अच्छा लगता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की यही समस्या है, हम ऐसा ही चाहते कि अमुक व्यक्ति है वह मेरे प्रति पक्षपात कर ले और बाकी दूसरों के लिए निष्पक्ष रहे, यही तो इच्छा होती है। ये कोई को भी हो, बहुत बड़ा व्यक्ति भी हो, हमें ऐसा लगता है कि वह निष्पक्षता का आचरण तो दूसरों के साथ करे, पर मेरे साथ जरा पक्षपात का आचरण करे, तभी तो ऐसा लगता है कि अपनापन है, कि भाई ये मेरे अपने हैं। यह कहने का क्या मतलब हुआ, जब ये मेरा पक्ष नहीं लेते तो मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मेरे अपने हैं? तुलसी का यह सिद्धांत। और इसीलिए कहा कि मेरे जो प्रभु हैं श्री राम हैं, इनको मैं निष्पक्ष नहीं मानता, इनको मैं सपक्ष मानता हूं, पक्षधर मानता हूं। कहा तुलसी ये तो बड़ी अद्भुत बात कर दी, आप पक्षधर मानते हैं तो क्या मतलब? तुलसी जी ने चित्रण शुरू दिया वहां पर, वहां जो जनक जी की वाचिका है, प्रभु गए हैं पुष्प चयन करने के लिए, वे पक्षधर हैं, पक्ष का धारण करते हैं। किस पक्ष का धारण करते हैं?
मोर पंख सिर सोहतनी के,
मोर पंख का धारण करते हैं। यह पक्ष है पंख, पंख का तात्पर्य पक्ष से, ये मोर पंख अपने सिर पर धारण करते हैं और क्या कहते हैं,
मोर पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के,
मोर पक्ष धारण कर लिया प्रभु ने, बीच बीच में फूलों का गुच्छा सजा हुआ है और मोर पक्ष धारण करते हैं। अब तुलसी का तात्पर्य यह है कि वहां पर तो उस वाटिका में कितने प्रकार के पक्षी थे, पर प्रभु ने किसी का पक्ष धारण नहीं किया, मोर का ही पक्ष धारण उन्होंने किया। क्यों, वहां क्या क्या थे,
चातक कोकिल कीर चकोरा गूंजत बिहगन तत कल मोरा,
वहां पर कितने प्रकार के पक्षी, वहां चातक है, वहां पर तोता है, वहां पर कोकिल है, कोयल है, वहां पर चकोर पक्षी है, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हैं और वहां पर मोर भी नाच रहा है, पर प्रभु ऐसे हैं कि किसी अन्य का पक्ष स्वीकार नहीं करते, वे मोर का पक्ष स्वीकार करते हैं, सिर पर धारण करते हैं। तुलसी ने कहा कि मेरे जो प्रभु हैं वे मोर पंखधारी हैं, किसलिए मोर पंखधारी हैं, क्या कह रहे, यही तो है, या मोर में ही तो ये दो अर्थ हो गए, मोर कहने से मयूर और मोर कहने से मेरा। जब हम प्रभु से कहें कि ये मोर पंखधारी हैं, मेरा पक्ष ले रहे हैं, मोर पक्षधारी हैं, कि ये प्रभु कैसे हैं, श्री राम कैसे हैं, मेरा पक्ष लेते हैं, मेरे पक्षधारी हैं, और जब प्रत्येक व्यक्ति उन्हें मोर पंखधारी के रूप में देखता है तब फिर प्रभु निष्पक्ष नहीं रहे, प्रत्येक को ऐसा लगता है कि प्रभु मेरा ही पक्ष ले रहे हैं। मानो तुलसी प्रभु को निष्पक्ष नहीं रखना चाहते, वे कहते हैं कि वे तो पक्षधर हैं, वे सपक्ष हैं, और पक्ष किसका लेते हैं, मेरा लेते हैं। तो तुलसी के जो राम हैं वे मोर पंखधारी हैं, वे मेरा पक्ष लेते हैं। और एक व्यक्ति अगर ऐसा हो जिसके प्रति सभी का यह भाव हो ये मेरा पक्ष लेते हैं, उससे बढ़कर के कौन सी बात हो सकती है, उस व्यक्ति से बढ़कर के श्रेष्ठता और कौन सी हो सकती है। यदि एक व्यक्ति को देख करके प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना उठती हो ये तो मेरे पक्षधर हैं, बस यही सार्थकता है। तो तुलसी के श्री राम सबके पक्ष लेते हैं, कहता भी है न भक्त,
सब है विपक्ष को पक्ष न हमारो है, मोर पक्षवारो प्रभु मोर पक्षवारो,
प्रभु मैं तो मेरे तो कोई पक्ष लेने वाला है नहीं है, सभी मेरे विपक्ष में हैं, तो तुम मेरा पक्ष ले लो, मेरा पक्ष ले लो। और इसलिए तुलसी श्री राम के सिर पर मोर का पक्ष लगा देते हैं। जैसे अगर चातक का पंख उन्होंने लगाया होता, कोकिल का पंख लगाया होता, तोते का पंख लगाया होता, अगर उन्होंने वहां पर ये भिन्न दूसरे पक्षियों के पंख लगाए होते तो उससे क्या था, उसे किसी प्रकार की सार्थकता नहीं थी, है वे दूसरे पक्ष लगा करके चले हैं, पर जब मोर पक्ष लग गया मानो प्रभु पर मुहर लग गई, ये मेरे पक्षधारी हैं। और तुलसी यह भी कह देते हैं कि मोर पक्षधारी तो भगवान बनते हैं, पर कब बनते हैं, मेरा पक्ष कब लेते हैं, मोर का पंख अपने सिर पर कब लेते हैं, जिस समय मोर अपना पक्ष छोड़ देता है तब प्रभु उसे लेकर के अपने सिर पर लगा लेते हैं। इसका मतलब जब मैं अपना पक्ष छोड़ दूंगा, मैं अपना अहंकार ममत्व छोड़ दूंगा, तब तो प्रभु मेरा पक्ष लेंगे, और मैं यदि अपने पंख को रखा रहा, मोर यदि अपने पक्ष को पकड़े रहे तो प्रभु से कैसे ले सकते हैं। तो जिसने अपना पक्ष छोड़ दिया, जिसने अपने पक्ष का समर्पण कर दिया, प्रभु उस पक्ष को ग्रहण करते हैं। यदि हम चाहते हैं, तुलसी कहते हैं कि प्रभु मोर पक्षधारी बने, अपना पक्ष छोड़ दो, यह तुलसी का संदेशा है। तो श्री राम मोर पक्षधारी बनते हैं कब, जब हम अपना पक्ष छोड़ देते हैं। तो इससे संकेत क्या देते हैं तुलसी, संकेत देते हैं, बड़ा सार्थक संकेत देते हैं कि प्रभु ऐसे हैं जिनके पास सभी जा सकते हैं, सब, कहा कि सबका मतलब, अरे सब कोई जा सकते हैं, उनके पास अगर ज्ञानी जनक जा सकते हैं तो उनके पास अत्यंत गांव की भोली भाली स्त्रियां भी जा सकती हैं, ये दोनों जा सकते हैं। चार प्रकार के साधकों की बात कही रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, ये चार प्रकार के लोग भगवान को जाकर के प्राप्त करते हैं। चार प्रकार के लोग कौन है, उन्होंने कहा एक तो राजा जनक है, इन्होंने श्री राम को प्राप्त किया, उनका परिचय प्राप्त किया, उनके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा कि ये कौन है, और विश्वामित्र जी के माध्यम से वे श्री राम को प्राप्त करते हैं। दूसरे कौन है? हनुमान जी है। आप पढ़ते हैं कि हनुमान जी भी उन्हें प्राप्त करते हैं, पर कैसे प्राप्त करते हैं? हनुमान जी ने तो जाकर के सीधे प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों कौन हो, श्यामल और गौर शरीर वाले? इस प्रकार से प्रश्न किया, सीधे प्रश्न करके हनुमान जी ने जाना तीसरे कौन है। तीसरे कहते हैं कि वहां पर गांव में जो बूढ़े लोग थे, तीन महाजिनी वृद्धि बुढ़द सयाने तीन कर जुगुति राम पहचाने, उन्होंने युक्ति करके राम को पहचाना, जो गांव के बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने युक्ति करके श्री राम को पहचाना, ऐसा वहां पर कहा गया। कैसी युक्ति की? हम पढ़ते हैं मानस में कि वे लक्ष्मण जी के माध्यम से जाकर के पूछते हैं कि कौन है, लक्ष्मण जी बता देते हैं, और चौथे कौन है, गांव की भोली भाली स्त्रियां, और ये भी श्री राम को पहचानती हैं, जान लेती हैं। कैसे जान लेती हैं? जाती हैं सीय समीप ग्राम प्रिय जाही पूछत अति स्नेह सकुचाही। गांव की ये औरतें भोली भाली गंवार ये भी श्री राम को प्राप्त कर लेती हैं। कैसे? सीता जी के माध्यम से। ज्ञानी जनक ने विश्वामित्र के माध्यम से प्राप्त किया, अत्यंत जिसे हम कहेंगे कि विवेकी, ये जो हनुमान जी हैं ये अपने विवेक के बल पर सीधे जाकर के प्रश्न करते हैं, को तुम हो? जो बड़े बूढ़े थे, जे तिन मह वय विरिध सयाने तिन कर जुगुति राम पहचाने। युक्ति की क्या लिया? वैराग्य का आश्रय लिया, लक्ष्मण जी का आश्रय लिया, कि ये बड़े बूढ़े थे, इनके भीतर में वैराग्य का भाव आया, पर जो अत्यंत गांव की गंवार स्त्रियां थी जिनके पास और कोई संबल नहीं था, वे सीता जी के पास जाती हैं। और सीता जी कौन है? बड़ी अद्भुत बात कही, चित्रकूट महबसत प्रभु चित्र राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। कहा यहां पे कि वहां पर राम सीता लक्ष्मण ये राज वहां पर पर्णकुटी में है, ये मानो कौन है? साक्षात भक्ति देवी है सीता जी। भगवान राम ज्ञान है, या भैया लक्ष्मण ये वैराग्य हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु। तो ये जो गांव की स्त्रियां हैं वे भक्ति के माध्यम से श्री राम के स्वरूप का बोध प्राप्त करती, श्री राम को पाती, सभी पाते हैं। अगर ज्ञानी जनक भी जा सकते हैं तो गांव की ये गवानी ने ये भोली भाली स्त्रियां भी श्री राम के पास पहुंच पाती हैं। और भले ही जनक जी को जाने में एक लंबा समय लगा, उस समय की चर्चा, उसकी चर्चा तो आज नहीं कर पाएंगे, देखेंगे। तो जो हो, ये चारों के चारों, जैसे गीता में कहा है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृते नोर्जुन आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, ये चार प्रकार के लोग हैं जो मेरे भक्त हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझे पाते हैं। एक है ज्ञानी है, दूसरा है जिज्ञासु, तीसरा है आर्थ, और चौथा है अर्थार्थी। ये चार प्रकार के भक्त हैं। मानो तुलसी ने इन चार प्रकार के भक्तों को हमारे समक्ष ला करके रख दिया कि मानो ये जो जनक है वे क्या है? ये ज्ञानी है, ये ज्ञानी भक्त हैं। हनुमान जी क्या है? ये जिज्ञासु भक्त हैं, पूछते हैं को तुम हो, सीधे पूछते हैं। और ये कौन है जो बूढ़े हैं? ये हैं मानो अर्थार्थी हैं, ये जाते हैं लक्ष्मण जी के माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये कौन है, ये अर्थार्थी हैं। और स्त्रियां कौन है? आर्त है। जो आर्त है वह समर्पित होता है, वह व्याकुल होकर के जाता है, वह यह मान करके चलता है कि प्रभु मुझमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, यह तो आपकी कृपा से ही संभव होगा कि मैं आपके स्वरूप को पहचानूं। तो सीता जी के माध्यम से, भक्ति देवी के माध्यम से ये गांव की स्त्रियां पहचानने में समर्थ होती हैं। यह प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब जिस समय हम पढ़ते हैं कि जनक जी जब देखते हैं वहां पर भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ, और पूछते हैं विश्वामित्र जी से, क्या पूछते हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किनप कुल बालक ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा।
उभय बेच धर की सोई आवा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिन चंद चकोरा ताते प्रभु पूछूं सति भाऊ कहु नाथ जन करहु दुराऊ।
विश्वामित्र जी से पूछा कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनिमन तिलक के नृप कुल पालक। और जब यह प्रश्न सुना ब्रह्म जी निगम नेति कहीं धावा। ब्रह्म जिसको नेति नेति कह करके पुकारता है उभय वेशधरी को सुवावा कि वही जो ब्रह्म है जिसका प्रतिपादन शास्त्रों ने नेति नेति के नाम से किया है क्या वही ब्रह्म दो रूप धारण करके आ गया है। सहज विराग रूप मन मोरा मेरा यह मन सहज विराग रूप है थकित होत जिन चंद चकोरा जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर थकित हो जाता है वैसे ही इनके मुख चंद्र को देख करके मैं थकित हो रहा हूं। आप कृपा कीजिए प्रभु मैं अत्यंत अनुराग के साथ अत्यंत निष्ठा के साथ आपको पूछता हूं कि दोनों बालक कौन है। कहूं ना सुंदर दो बालक नृप कुल तिलक मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। यह उन्होंने बात पूछी कि ये नृप कुल बालक हैं माने यह जो नृप का कुल है राजाओं का कुल है उसके कोई पालन करने वाले हैं या मुनि कुल तिलक हैं मुनि कुल के तिलक हैं। और जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो एकदम से हंस पड़े विश्वामित्र जी का मुनि बिहसी जोरों से हंसे। अब लगा कि जनक जी लोग हंसने की क्या बात मैंने कही मैंने तो सीधा साधा प्रश्न किया मैंने जानना चाहा और ये हंस पड़े। विश्वामित्र जी जोरों से हंसते हैं उन्होंने कहा कि देखो हंसने का कारण यह है राजन कि मैंने देख लिया तुम इतने बड़े ज्ञानी हो पर जब तुम श्री राम के सामने आए तो तुम्हारा ज्ञान कहीं रफू चक्कर हो गया है ऐसा लगता है। तुम्हारी जो बुद्धि हरदम सजग रहती है वह सजगता समाप्त हो गई है और तुम उल्टा पुल्टा प्रश्न कर रहे हो। तुम पूछते हो कि क्या ये मुनिकुल तिलक हैं या नृपकुल पालक हैं। अरे कोई ऐसा प्रश्न थोड़े ही पूछा जाता है यह तो मुनियों का पालक पूछना था और नृपकुल का तिलक पूछना था तो जनक जी जरा उल्टा बोल जाते हैं वे बेसुध हो गए हैं प्रभु के रूप सौंदर्य को देख करके माधुर्य को देख करके वे पूछते हैं कि ये मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं। कि ये नृपकुल पालक तो नहीं होता नृपकुल का तिलक कोई होगा कि राजाओं में कोई तिलक है और मुनिकुल पालक मुनियों का पालन करने वाले कोई हैं ऐसा पूछना चाहिए था। जैसे है ना रामचरितमानस में ही आता है मुनि पालक खल सालक बालक कि ये मुनियों के पालक हैं परंतु अटपटी बात हो गई जनक जी उल्टी बात कहते हैं और इसीलिए विश्वामित्र जी हंस पड़ते हैं। और जब उनको हंसते देखा अच्छा शायद न लगा हो तो वही विश्वामित्र जी कहते हैं कि भाई कि देखो ये जो है ना कि मुझे हंसी आ गई कि तुमने बात उल्टी कह दी अब मैं जानता हूं तुम भाव विभोर हो गए हो तुम्हारा ज्ञान अभी दब गया है। जो हरदम सजग ज्ञानी है राजा जनक उनका ज्ञान उस समय दब जाता है जब प्रभु के सौंदर्य के दर्शन वे करते हैं। और दूसरी बात बताऊं मैं क्यों हंसा कहां बताइए महाराज। बात यह है कि एक बार तो तुम कहते हो वे बालक हैं और दूसरी बार तुम कहते हो वे पालक हैं। अरे जो बालक होगा वह पालक कैसे होगा और जो पालक होगा वह बालक कैसे होगा ये दोनों अटपटी बात कैसे करते हो। जैसे एक कथा आती है बड़ी वहां पर ऐसी कथा आती है वृंदावन की बात गोस्वामी तुलसीदास जी वहां पर गए हुए थे सूरदास जी से उनकी भेंट हुई। सूरदास जी और तुलसीदास जी दोनों समकालीन थे यह तो आप सभी जानते हैं और वहां पर वे दोनों के दोनों बैठे हुए भगवान की चर्चा कर रहे थे उसमें निमग्न थे। इतने में जोरों से आवाज आई कि एक पागल हाथी निकल गया है भागो 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 भागो। सूरदास जी तुरंत उठे और एकदम से टेकते हुए एकदम भागने का उपक्रम करने लगे। तुलसीदास जी ने कहा कि अभी तो आपने भगवान की इतनी सुंदर चर्चा की और यह सब कहा और एकदम जहां पागल हाथी की बात सुनी कि आप उठकर के भागने लगे यह कैसी बात है फिर भगवान की चर्चा की। कहा भैया मेरे भगवान तो छोटे से बालक हैं उनको स्वयं रक्षा की जरूरत पड़ती है वह मेरी क्या रक्षा करेगा पर आपके भगवान तो धनुषधारी हैं वे पागल हाथी को मार ले सकते हैं पर आपको भले डर ना हो पर मुझे तो डर है यह भाव की रक्षा है। कि तुलसीदास वे समझते हैं उनके प्रभु हैं धनुर्धारी, दुष्टों का दमन करने वाले। तो ठीक है, अगर कोई दुष्ट आया है, अगर कोई विपत्ति आई है, तो उनके प्रभु उनकी रक्षा कर दे सकते हैं। पर यहां पर सूरदास जी वे तो यही मानते हैं कि मेरे भगवान क्या है, शिशु है, और जब शिशु है तो रक्षा क्या करेंगे, उनकी रक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए सूरदास भागते हैं।